ओम शांति। तो हम सब बाबा के बच्चे सब ठीक हैं? सबने बाबा को पत्र लिखा? किस संबंध में लिखा? ठीक है, सबने लिखा, अच्छा लगा। रोज लिखना है बाबा को पत्र, वैसे तो हमें रोज ही लिखना है, जैसे इंटरव्यू पे रहते हैं तो भी। तो बाबा के कई लाखों बच्चों के अनुभव हैं, अपने कोई भी मन की बात। हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता जी भी ये पुरुषार्थ बताते हैं, हमारे सूरज भाई भी ये पुरुषार्थ बताते। बाबा को लिख कर देने से हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो अपने मन की बातें किससे करेंगे? दिलाराम बाबा से। क्योंकि आज दुनिया में कोई भी दिल को आराम देने वाला नहीं है, है कोई? सब दिल को दर्द देने वाले हैं। अब दिलाराम मिला है, अपने दिल की सारी बातें बाबा से हमें करनी है, और एक बाबा से ही अपनी दिल लगानी है। नहीं तो एक गीत है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर उधर गिरे हुए थे, है ना? अब सर संबंध एक बाबा के साथ। पिछले संडे की अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को निरंतर योगी बनने का सहज पुरुषार्थ बताया था। कौन सा याद है? सर्व संबंध एक बाबा के साथ। जब सर्व संबंध एक बाबा के साथ होंगे तो फिर कहीं बुद्धि हमारी भटकेगी नहीं। और उससे पहले की मुरली में बाबा ने पोता दोता भी मेरे को बना लो ये भी कह दिया था, याद है माताओं को? हा? अब तक तो हम बाबा को बाप, टीचर, गुरु, सखा, साजन, बच्चा करते थे, लेकिन उस दिन तो बाबा ने कहा कि पोते दोतों में बुद्धि ज्यादा जाती है, इसलिए सब कुछ बाबा ही है मेरा। तो जब बाबा ही मेरा संसार है तो फिर और कहीं हमारा मन बुद्धि भटकेगी ही नहीं। तो ऐसे बाबा के हम सब निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, है निश्चय बुद्धि, सबको निश्चय है। तो सुबह सुबह आज निश्चय के ऊपर हमारी प्रेम बहन देहरादून वाली, उनकी ही बात याद आ रही थी। देहरादून वाले बच्चे बैठे हैं, आप सबने तो शायद उनके मुख से सुना होगा, लेकिन बहुत साल पहले हमने उनकी क्लास की थी। उन्होंने दो बातें अपनी बहुत अच्छी बताई जो मैंने सोचा आज हम देहरादून के भाई बहनों के साथ और इस भट्टी में वो बात हो सकता है आपने सुनी भी हो, तो मैं सबको वो बात पॉइंट जरूर सुनाती हूँ जहां जहां भी सेवा में रहते हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी अपनी क्लास में बताई थी कि एक बार आंख खोलकर अच्छी तरह से देख लो ये कौन है हमारे सामने, कौन हमको मिला है, किसके हम बच्चे हैं, कौन हमारे सामने बैठा है, कौन हमको पढ़ा रहा है। अंधश्रद्धा की बात नहीं है, हम सभी भाई बहनों को कहते हैं ना ये विश्वविद्यालय, ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, यहाँ अनुभव की बात है, पढ़ाई है ये। तो एक बार अच्छी तरह से आंख खोलकर उसे पहचान लो, निश्चय हो गया कि ये भगवान है, तो फिर आंख बंद कर दो। क्या मतलब हुआ? आंख बंद करके फिर बाबा जो कहता है जैसा कहता है उस बात पर एक्यूरेट चलते रहो, उसमें फिर हमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। निश्चय हो गया तो फिर आंख बंद कर लो, क्योंकि भगवान जो हमें कहता है उसमें कभी भी हमारा अकल्याण नहीं हो सकता। कभी कभी चलते चलते क्या होता, माया, परीक्षा ऐसी आ जाती है। तो ये इस पर मुझे एक और वृतांत याद आ रहा था जो जानकी दादी जी की क्लास में हमने एक बार सुना। एक भाई आया और कहा, दादी मेरी बेटी जो है आपके सेंटर पे रहना चाहती है। बेटी गांड में चलती थी, आप इसको रखो अपने पास, लेकिन इसको सुबह नहीं उठाना, क्योंकि आप लोगों के यहां तो सुबह जल्दी उठा जाता है। ये सुबह उठती है तो इसको सिर में दर्द हो जाता है, इसको सुबह नहीं उठाना। तो दादी ने कहा ठीक है, नहीं उठाएंगे। बाबा के घर में एक कन्या आए तो कितनी अच्छी बात है, क्योंकि बाबा को तो क्या चाहिए, कन्याएं चाहिए। जितनी कन्याएं ज्यादा निकलेंगी उतने सेंटर ज्यादा खुलेंगे, उतनी सेवाएं आगे बढ़ेंगी। दादी ने कहा ठीक है। दादी ने कहा मेरे साथ में जो भी बहनें थी सब बहनों को मैंने मना कर दिया कि राजकुमारी है, लाडो है, इसको सोने देना, उठाना नहीं, क्योंकि इसके बाप ने कहा इसको सोने दो। और अंदर अंदर दादी ने कहा कि मैंने बाबा को कहा बाबा अगर होगी तेरी बेटी तो उठ जाएगी है? और अगर होगी उसकी बेटी तो नहीं उठेगी। 6 दिन 5 8 दिन 10 दिन के बाद वो कन्या अपने आप उठकर अमृत वेले के योग में, जब सब बहने बैठकर योग करती थी, वो भी आकर के बैठने लगी और आज दिन तक उसको सिर में दर्द नहीं हुआ। ये निश्चय था, है ना? हम लोग कभी कभी श्रीमत पर चलने में भी इधर उधर का जब खान पान की परहेज की बात आती है तो परिवार वाले भी समाज वाले भी कई बातें हम लोगों के सामने परीक्षाओं के रूप में लाते रहते हैं। तो इन सब बातों को बाबा की पालन करने के लिए क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। जब भक्तों को इतना निश्चय होता है तो फिर जो भगवान के बच्चे बने हैं, भक्तों की कहानियां तो हम सब ने सुनी है, मीरा की सुनी, प्रहलाद की सुनी, ध्रुव की सुनी, वो तो भक्ति मार्ग वाले थे, इनडायरेक्ट कनेक्शन था उनका भगवान के साथ, लेकिन हमारा तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जब भक्ति मार्ग में भगवान इतना बच्चों की, भक्तों की पालना करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको सहयोग देता है, तो हमको कितना देगा सोचिए। तो कभी भी फिर बाबा की बात को मानने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, मुश्किल नहीं होगी। आंख बंद करके, है ना, जैसे प्रेमबेन की बहुत अच्छी बात है, मैं सबको सुनाती हूँ, करते चलो। भक्तों की कहानी आती है ना, एक भक्त की बहुत अच्छी कहानी आती है। एक भक्त था, भगवान की बहुत पूजा करता था और एक दिन उसने अपने घर में सत्संग कराया तो स्पीकर वगैरह लगे, तो पास में जो पड़ोसी था उसने कहा कि तुम क्यों रोज रोज आए दिन इतना सत्संग करते रहते हो, हमारी नींद खराब होती है, इतनी आवाज होती है, सोएंगे नहीं तो सुबह धंधे में कैसे जाएंगे, तो खाएंगे कैसे। तो उस भक्त ने कहा भगवान सबको खिलाता है, आपको भी खिलाएगा। तो उसने कहा ठीक है, अब देखता हूँ कि तुम्हारा भगवान सबको कैसे खिलाता, क्या आपको भी खिलाएगा। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, घर से निकल गया कि आज देखता हूँ भगवान कैसे खिलाता है। घर वालों को कहा मैं बाहर जा रहा हूँ और मेरे को कुछ खाने पीने के लिए नहीं चाहिए, देखता हूँ भगवान कैसे खिलाता है। भक्त कहते हैं ना भगवान सबको खिलाता है, सबकी पालना करता है, देखते हैं कैसे भगवान पालना करता है। तो निकल गया घर से, दूर जंगल में चला गया और जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, देखते हैं भगवान आज कैसे खिलाता है। उस भक्त को इतना निश्चय है भगवान के ऊपर, तो मैं भी आज भगवान की परीक्षा लेता हूँ। कभी कभी भक्त भी भगवान की परीक्षा लेते हैं। तो चला गया ऊपर जाके बैठ गया। तो रात को क्या हुआ कि कुछ चोर लुटेरे आए और वहां पर आकर के उन्होंने वहां पर भोजन खोला तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये भोजन कैसा होगा, किसने रखा होगा यहाँ पर। एक थैला पड़ा था कोई भोजन का, कोई राहगीर छोड़ के गया, तो उसने कहा पता नहीं कैसा होगा, किसने रखा होगा, कहीं पता नहीं इसमें कोई जहर नहीं मिला दिया हो, किसी ने सोचा होगा कि पता नहीं ये खा लेंगे तो हमको मिल जाएगा सब कुछ। तो देखो आसपास में कोई है तो नहीं जिसने यहाँ पर भोजन रखा है। तो इधर उधर देखा, कोई नहीं मिला। तो ऊपर देखा तो एक भाई ऊपर देखा, अच्छा तो इसने ये भोजन रखा है और मेरे हम लोगों को खिलाने के लिए इसने कुछ ना कुछ जहर मिलाया होगा ताकि ये सारा माल हमको मिल जाए। तो उसको नीचे उतारा, ये तुमने रखा भोजन? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं रखा, कोई आया था राहगीर यहाँ छोड़ गया थैला। नहीं तुमने ही रखा है। नहीं मैंने नहीं रखा, तुमने ही रखा है। अच्छा इसमें कुछ मिलाया है? मैंने रखा ही नहीं तो मैंने मिलाया कैसे? अच्छा नहीं मिलाया इसमें तो खाओ ये खाना, खा के दिखाओ। तो उसको क्या किया? भोजन खिला दिया। तो भगवान कैसे खिलाता है? कहते हैं कि भगवान मार के भी खिलाता है। इतना हमें भक्तों को निश्चय होता है तो हम बच्चों को भी कितना निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय किन किन बातों में चाहिए? अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और अपने परिवार में निश्चय। हमारा परिवार ये कितना सुंदर परिवार है। आज सुबह अमृत वेले जब योग करा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब बाबा के बच्चे हैं, कितने अच्छे लग रहे थे। कितना सुंदर पवित्र बाबा का परिवार हम बच्चों को मिला है। तो ये कितना श्रेष्ठ परिवार, कितना अच्छा परिवार है हमारा ब्राह्मण परिवार। हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखने वाला, इसमें भी निश्चय होना चाहिए। हमारी जो बड़ी दादियां हैं, हमारी सेवा करने वाली हमारी निमित्त बहने हैं, ये कितना अच्छा परिवार है। लौकिक परिवार वालों की तो कहानी आजकल आप लोग घरों में सुनते ही रहते हैं ना, परिवारों की स्थिति क्या है आजकल, घर घर की कहानी कैसी है। तो बाबा ने हम बच्चों को चुना, हम कितने भाग्यशाली हैं। तो सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहेंगे, ठीक है। तो मैं 15-20 मिनट आधा घंटा थोड़ा साकार बाबा के अनुभव, दादी के साथ के अनुभव मेरे अनुभव में ही आ जाएंगे। हमको ये बाबा का ईश्वरीय ज्ञान कैसे मिला? लौकिक जन्म पंजाबी फैमिली में हुआ जयपुर में, और बचपन से ही भक्ति भावना में बहुत रुझान था, क्योंकि हमारी जो लौकिक माँ थी वो आनंदपुर दरबार को मानती थी, बहुत उनका ध्यान था वहां। लेकिन हमारे लौकिक पिताजी जो थे वो बिल्कुल ही खाने पीने वाले, पंजाबी लोगों का खाना पीना तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, बहुत तामसिक था। इसलिए परिवार में हमारी माँ और उनके पिताजी का दोनों का क्लैश चलता था। वो कहती थी छोड़ दो, वो कहते थे मेरे बाप दादा उन्हें नहीं छोड़ा तो मैं कैसे छोड़ सकता। परिवर्तन तो ईश्वरीय शक्ति से ही होता है। एक बात जो माताओं के अंदर तो प्योरिटी और ये सब ज्यादा होते हैं ना, तो एक बात माताएं, आज हमारी हर क्लास में हर सेंटर्स में माताओं की संख्या ज्यादा है, तो माता जी मम्मी हमारी एक बात सिखाती थी हमें जब हम बहुत छोटे छोटे थे कि आपके डैडी जब आएंगे, बिजनेस है होलसेल का कपड़े का जयपुर में कटला जौहरी बाजार में, तो तुम लोग जोर जोर से पढ़ना, किताबों में आते शराब पीने से क्या क्या हानियां होती। देखो माताएं कैसे अपने परिवार वालों का कल्याण करती हैं, ये सिखाते थे वो हमें, और हम जोर जोर से पढ़ते थे। लेकिन परिवर्तन तो भगवान से ही होना था। तो ये करते करते हमारे अंकल जो थे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस करते थे, उनको बाबा का ज्ञान मिला। वो गई कैसी थी? सीआईडी इंस्पेक्टर बन के, पहले वो सीआईडी में भी सर्विस कर चुके थे, फिर बाद में बैंक में नौकरी की। तो एक सीआई, उस समय ब्रह्मा कुमारियों के बारे में बहुत विरोध था, है ना, आज से 50-55 साल पहले की बात बता रही हूँ। बहुत विरोध था, तो वो तो एक इंक्वायरी करने के हिसाब से गए थे, लेकिन वहां जाकर के जो उनको शांति पवित्रता का जो वातावरण मिला, वो वहां के रेगुलर स्टूडेंट बन गए। और उन वो भी खाने पीने वाले थे, तो उनके जीवन के अंदर एकदम परिवर्तन आ गया हमारे अंकल के जीवन में। तो उन्होंने एक बार मेरे को कहा कि शील तुम चलो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले चलता हूँ। वैसे हमारे समाज स्कूल में पढ़े तो हवन आदि भी करते थे, मूर्ति पूजा भी करती थी मैं, सनातन धर्म को भी, पूनम का व्रत रखना, मंगल का व्रत रखना, सुख सागर पढ़ना, भागवत पढ़ना, ये मेरे को बचपन से ही बहुत ज्यादा था। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। बहुत वहां गए, ज्ञान तो नहीं था उस समय, हम सेवेंथ एट्थ क्लास में ही पढ़ते थे, और चित्र भी नहीं थे उस समय, तो ज्यादा चित्र भी नहीं थे, ये सब चित्र तो बाद में ही बने। तो एक त्रिमूर्ति का चित्र था, एक सृष्टि चक्र का, तो एक बहन ने हमें समझाया, थोड़ा सा समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन वातावरण बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, और हम जिसे एक शक्ति थी जो हमको खींचती थी वहां पर जाने के लिए, तो हम रोज वहां जाने लगे, मैं और मेरे साथ मेरी कजन सिस्टर, उनकी बेटी, वो भी मेरे से एक दो साल बड़ी थी, और एक मेरी और छोटी सिस्टर है, दो साल छोटी है, फूल दीदी, जो भी जोधपुर में है। तो हम बहने जाती थी। तो जैसे ही हमारे लौकिक फादर को पता चला, तो उन्होंने इतना विरोध किया, इतना गुस्सा किया कि तुमको नहीं जाना है वहां पर, टांग तोड़ दूंगा अगर तुम वहां गए तो। और सेंटर बहुत दूर था हमारे घर से, तो हम साइकिल लेकर जाते थे, लॉक कर दिया, जाना ही नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत विरोध किया। फिर कैसे बाबा ने उनको अपना बनाया, लेकिन हम छुपके छुपा के, क्योंकि माँ हमारे साथ सहयोगी थी और बाबा बहुत खींचते थे, तो हम वहां पर चले जाते थे कभी दिन में कभी कैसे, और अंकल आंटी तो हमारे साथ थे ही। तो एक दिन हमने उनको कहा मैं आबू जाना है, हमारे अंकल आंटी आ रहे थे, तो उन्होंने पता नहीं कैसे छुट्टी दे दी कि चलो बच्ची है घूम आएगी, माउंट आबू कभी देखा ही नहीं है, इस हिसाब से उन्होंने हमको छुट्टी दे दी। हम आए यहाँ, उस समय मैं नाइन्थ में पढ़ती थी, तो बाबा के कमरे के बाहर जो आंगन है ना, पूरा पांडव भवन का आंगन सबको बहुत अच्छा पसंद आता है, वो वहां से बाबा अपने कमरे की से निकले बाहर, और हम शांति स्तंभ से, जहां भी शांति स्तंभ है उसके सामने जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बन रहा था उस समय, हम लोगों को वहां पर ठहराया हुआ था, तो मैं उस कमरे की तरफ जा रही थी। तो बाबा जैसे बाहर निकले मैं रुक गई, बाबा रुक गए, और बाबा ने कहा कि बच्ची तुम भगवान लाल की बेटी हो, हमारे लौकिक फादर का नाम भगवान दास था। तो बाबा क्या करते थे, जिसके पीछे दास अक्षर आता था ना, तो बाबा क्या करते थे, बच्चे तुम्हें दास नहीं बनने, बाबा लाल, ठीक है, लाल बनने, ऐसे शब्द बाबा को अच्छे नहीं लगते थे, तो बाबा नाम चेंज कर देते थे। तो हमारी जो टीचर बहन थी आदरणीय निर्मला दीदी जी, उन्होंने हमारा परिचय दे रखा था बाबा को, तो इस हिसाब से बाबा ने पूछा, तो बच्ची तुम भगवान लाल की बेटी हो, मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें अपने बाप की सेवा करनी है, ऐसा बाबा ने कहा। मैं तो कुछ समझ में नहीं आया, बाल बुद्धि थी, कुछ समझ में नहीं आया कि ये कोई मेरे को बाबा का वरदान मिल रहा है, और मैं तो फिर चली गई पढ़ाई में लग गई। फिर टेंथ पास की इसके बाद मेरे को एक दिन दीदी ने कहा कि तुम्हें बाबा ने ये महावाक्य कहे, बाबा ने तुम्हें वरदान दिया, तुम अपने बाप की सेवा करो। तो मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ उनको मैं कुछ कहूं, तो मैंने कहा कि आप सेंटर चलिए, बहुत अच्छा सेंटर है और आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको कोई बुराई नजर आए तो फिर आप नहीं जाना, मैं भी नहीं जाऊंगी, तो मैं घर में सबसे बड़ी। तो इस हिसाब से, जैसे एक बच्चों के दिल रखने के हिसाब से उन्होंने, और वो बाबा का वरदान था उनको, तो वो बात जैसे उनको ठीक लगी और वो सेंटर गए। वो सतगुरुवार का दिन था, बाबा को भोग स्वीकार कराया, सेंटर का वातावरण देखा, शांति पवित्रता आनंद का उनको में अच्छा अनुभव हुआ, और वो इतना परिवर्तन हो गए, इतना परिवर्तन हो गए कि उन्होंने कभी भी फिर हमको रोका ही नहीं। ये था बाबा का वरदान। कैसे बाबा ने उनको अपना बनाया, बाबा तो भृगु ऋषि की तरह सबकी जन्म पत्री को जानते हैं। बाबा जानते थे कि इस परिवार में से दो तीन बच्चियां बाबा की सेवाओं में लग सकती हैं, इसलिए उस आत्मा की सेवा पहले बहुत जरूरी थी, और एक ही बार कहने से उन्होंने हाँ कर दी। बाबा जानते हैं ना सबकी जन्म पत्री को, कौन आत्मा का कैसे कल्याण करना है। तो भृगु ऋषि की बात के ऊपर एक बात प्रेम दीदी की और याद आ रही थी, एक वो भी हमने उनके मुख से सुनी कि एक बार प्रेम दीदी, उस समय ज्यादा विस्तार नहीं था सेवाओं का, जब यहाँ आई बाबा से मिली थी, तो बाबा ने उनको कहा था, बच्ची तुम्हें साधु संतों की, महात्माओं की सेवा करनी है, ऐसा बाबा ने उनको वरदान दिया। फिर यहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है ना माउंट आबू में, तो कहा बाबा ने मेरे को एक श्री कृष्ण का चित्र दिया और एक आम दिया। उस समय आम, हापुस आम बहुत कम आते थे, आजकल तो सब जगह हापुस आम मिल जाते हैं, बहुत कम आते थे। तो बाबा के पास जब भी हापुस आम आते थे साकार बाबा के पास, तो बाबा सबको बहुत प्यार से वो बच्चों को टोली देते थे। तो वो एक आम दिया प्रेम दीदी को और श्री कृष्ण का चित्र दिया कि बच्ची तुम जाओ और जाके रघुनाथ मंदिर जी की, महात्मा जी की सेवा करो। और वहीं से दीदी कह रही थी कि हमें निकलना था, तो वहां गए तो महात्मा जी तो एकदम गुस्से हो गए, चित्र फेंक दिया, आम फेंक दिया। उस समय तो बहुत विरोध करते थे ना महात्माएं। तो कहा मैं तो वहां से फिर बस में बैठ गई, जाके बाबा को पत्र लिखा, पूरी बस में सोचती रही बाबा तो कहते तेरे को महात्माओं की सेवा करनी, ये महात्माएं सेवा क्या सेवा करूंगी मैं, ये महात्माएं तो देखो ऐसे करते हैं, लेकिन बाबा देखो कितना है ना जन्म पत्री को जानता है। आगे चल करके हमारी प्रेम दीदी ने ही कितनी सेवाएं, सारी सेवाएं जो आज हमारे संत महात्माओं की हुई हैं, वो प्रेम दीदी के द्वारा ही हुई हैं। इसको कहते हैं बाबा कैसे जानी जाननहार है। तो हमारे साथ भी बाबा ने, हमारे साथ भी यही अनुभव रहा बाबा का। तो बाबा ने जैसे हमको समर्पण होने का रास्ता क्लियर कर दिया। 65 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उस समय ब्लैकआउट हो जाते थे, दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी, तो हमारे फादर जब जल्दी घर आते आ गए, तो हमने उनको कहा आप थोड़ा सा क्लासेस कर लो, तो हमारी आदरणीय निर्मला दीदी जी के द्वारा उन्होंने थोड़ा सा क्लासेस की, ज्ञान प्राप्त किया, 7 दिन का कोर्स किया, और विदिन 7 डेज के अंदर अंदर उनको बाबा ने बहुत अच्छे अनुभव कराए। और फिर बाबा ने उनको पत्र लिखा कि बच्चे तुम जयपुर से जब अहमदाबाद माल खरीदने जाते हो, कपड़े वहां से खरीदते थे, तो आबू रोड तो रास्ते में पड़ता है, तो बच्चे यहाँ से होकर के जाना। तो वो जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिले तो ये अनुभव किया कि ये कोई साधारण, ये भगवान नहीं है, ये निश्चय तो इतना नहीं हुआ, लेकिन ये कोई साधारण, कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है, ऐसा कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, ये विशेष आत्मा है, ऐसा उनको अनुभव हुआ। और तभी से ही उन्होंने अपना खान पान सब सब कुछ परिवर्तित कर दिया। ये था बाबा का वरदान, बाबा की का चमत्कार, बाबा ने कैसे उस आत्मा को अपना बनाया। फिर हमारा पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता रहा, हम रेगुलर क्लास करते थे और साथ साथ हमने लौकिक पढ़ाई भी की। जब बीए ऑनर्स किया मैंने साइकोलॉजी में महारानी कॉलेज जयपुर से, तो जब ऑनर्स फर्स्ट सेकेंड ईयर में हम थे 1969 में, तब जैसे हम सुबह की क्लास में गए जब, तो बोर्ड पर लिखा हुआ था आज योग का प्रोग्राम है, सब योग में बैठे थे, मुरली शुरू हुई तो बहुत हलचल हुई, क्या हो गया? फिर दीदी ने बताया कैसे ऐसे बाबा व्यक्त हो गए हैं और जिसको भी जाना हो वो बाबा के अंतिम दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो शाम की ट्रेन से ही हम लोग बाबा से के अंतिम दर्शन करने के लिए जयपुर से हम लोग यहाँ आबू पहुंचे, मधुबन पहुंचे। उस समय छोटा सा ही मधुबन था, ये जहाँ पर अभी यशोदा दी जी का ऑफिस था वहीं पहले शुरू शुरू में भी क्लास होती थी, लेकिन बाबा के समय से हिस्ट्री हॉल बन गया था, तो बाबा का शरीर हिस्ट्री हॉल में ही रखा गया था। और 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए, तो 18 की पूरी रात और 19 का पूरा दिन पूरी रात, 20 का पूरा दिन पूरी रात, 21 को बाबा का अंतिम संस्कार हुआ। और जैसे आज सुबह शीलू बहन ने बताया था कि 21 जनवरी को ही बाबा की एक अव्यक्त मुरली, जो सबने पढ़ी है 69 की अव्यक्त मुरली बाबा की, वो जरूर पढ़ना आप लोग अगर नहीं पढ़ी हो तो, वो बाबा की पहली अव्यक्त मुरली थी। तो उस समय जब बाबा का अंतिम संस्कार यहाँ शांति स्तंभ पर हो रहा था, उस समय का अनुभव बताती हूँ। एकदम रोना 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 आ रहा था और खड़े खड़े ऐसा लगा बाबा तो अव्यक्त हो गए, बाबा साकार रूप से चले गए, अब तो बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा, बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा, तो अब मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी आगे, अब मुझे क्या करना है, सेवा में लगना है। ये संकल्प मैंने उसी दिन बाबा के अंतिम संस्कार के समय ही, ऐसा बाबा ने ही संकल्प दिया कि अब मुझे ये पढ़ाई नहीं करनी है, अब मुझे ईश्वरीय सेवा में ही समर्पित हो जाना है। फिर मैं हम लोग जयपुर पहुंचे, बहुत हलचल भी थी सब भाई बहनों के अंदर, बाबा व्यक्त हो गए, अब कैसे यज्ञ चलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन 69 की जो 21 जनवरी की मुरली बाबा ने चलाई, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, उस मुरली को चलने के बाद सब बाबा के बच्चों के संकल्प विकल्प जो भी चल रहे थे वो एकदम हलचल जो थी वो शांत हो गई। इतनी पावरफुल बाबा ने मुरली चलाई जो हमने रूबरू सुनी, और कैसे बाबा ने हमारी मनमोहिनी दीदी जी और दादी प्रकाशमणि जी के सिर पर गुलाब का फूल रखा और उनको यज्ञ के निमित्त बनाया, और दोनों दादियों ने दीदियों ने मिलके बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाया। तो जब हम वापस जयपुर पहुंचे और हमने अपना ये संकल्प बताया कि अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है, तो सब लोग कहने लगे नहीं पढ़ाई तो जरूरी होनी चाहिए, वो पढ़ाई भी करो ये भी पढ़ाई करो। मैंने कहा नहीं, अब मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे सेवा करनी है, सेंटर पे रहना है। फिर ये संकल्प किया कि अगर पढ़ाई छोड़ूंगी तो अच्छी तरह से छोड़ूंगी, कोई ये नहीं कहे कि कम नंबर आए थे आगे पढ़ाई नहीं कर सकती होगी इसलिए छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी तो फिर मैं अच्छी तरह से छोड़ूंगी। तो मेहनत की थोड़ा, और बाबा की मदद थी, सारी बाबा की मदद थी, टेंथ में भी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन, इससे पहले पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पढ़ाई में भी बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन आई, वो भी बाबा के कारण। मैं सारा क्रेडिट बाबा को हर पल देती हूँ, हर सेवाओं के अंदर भी मैं यही अनुभव करती हूँ। तो मैंने बाबा को ये कहा, बाबा अच्छी तरह से पढ़ाई छोड़नी है, लेकिन हाँ पढ़ाई छोड़नी जरूर है। तो मेहनत की तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन, फर्स्ट डिवीजन सेकंड पोजीशन, सिल्वर मेडल मिला, और सिल्वर मेडल मिलने के बाद भी मेरे को कई प्रलोभन है, एमफिल कर दो, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ये कर लो। उस समय साइकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और बहुत अच्छा स्कोप है नौकरी करने का। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे तो बस बाबा की सेवाओं में ही लग जाना है। तो ऐसे पढ़ाई पूरी करके मैं बाबा की सेवाओं में 1970 में 71 में सेवाओं में लग गई, और फिर थोड़ा सेवाएं राजस्थान की और उस समय सेवाओं में तो बहुत मेहनत थी, लोग तो इतना सुनते ही नहीं थे। तो माया आई। माया कैसे आई? नौकरी के लिए। पहले तो सोचा नौकरी नहीं करूंगी, फिर आई नौकरी की माया कि सारा दिन सेंटर पे जो है इतनी सेवाएं तो होती ही नहीं है। राजस्थान में भी बस केवल जयपुर था और नया नया उस समय जोधपुर खुला था। तो फिर मेरे को नौकरी की माया आई, फिर मैंने सर्विस ज्वाइन की। रहती सेंटर पे थी, लेकिन सेंटर पे रहते रहते मैंने बैंक में थोड़ा समय सर्विस की। और इस उसके बाद फिर हमारा एक दूसरा सेंटर खुला राजस्थान में, उदयपुर खुला। तो दादी जी आए हुए थे वहां पर, दादी प्रकाशमणि जी के साथ का अनुभव सुना रही हूँ अब। दादी प्रकाशमणि जी आए तो दादी ने मेरे को कहा शील इधर आओ। गई दादी ने कहा शील तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो? क्या दादी सुबह शाम तो सेंटर की सेवा करती हूँ, दिन में तो फ्री हुए तो नौकरी कर लेते हैं। तो दादी ने कहा क्यों तेरे को पैसे चाहिए क्या, या भगवान लाल तेरे से पैसे लेगा? ऐसा दादी ने मेरे से पूछा। क्या नहीं दादी उनको तो कोई जरूरत नहीं है, अच्छा बिजनेस है, फिर तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो? तुम अगर एक सेंटर संभाल लो तो निर्मला मेरे से हैंड क्यों मांगे? उस समय उदयपुर खुला था सेंटर, तो तुम अगर ऐसे करो तो मेरे से निर्मला हैंड्स मांग रही है। तो दादी जी के अंदर इतनी वाणी में पावर थी, जैसे शक्ति स्वरूप का मैंने अनुभव किया। मैंने कहा अच्छा दादी आप कहते हैं तो मैं ये संकल्प स्वाहा करती हूँ। तो मैं कई बार दादी जी से मिलती थी तो दादी जी को हमेशा कहती थी दादी जी मैं दोबारा आपके ऊपर ही, शक्ति के ऊपर ही बलि चढ़ी हूँ, मैंने इस संकल्प की बलि आपके ऊपर ही चढ़ा दी है। तो दादी का बहुत बहुत स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहा। दादी जी के साथ के कई अनुभव हैं। एक बार हम सेवा में थे, कहीं मैं और मेरे साथ एक बहन और थी, हम कहीं सेवा में जा रहे थे तो हमारा गाड़ी जो है गिर गई। वो बहन चला रही थी, मैं पीछे बैठी थी, तो थोड़ा एक्सीडेंट हुआ और थोड़ा सा कॉलर बोन का फ्रैक्चर हुआ। दादी जी को जब मालूम चला, उस समय तो आजकल तो मोबाइल है और ईमेल से कुछ ना कुछ लिखते, दादी जी ने अपने हाथ से पत्र लिखा मुझे। बहुत दौड़ती रहती हो सेवा में, बहुत दौड़ती रहती हो सेवा में, अब थोड़े समय के लिए बाबा ने आपको रेस्ट दिया है। ऐसा जब दादी का पत्र पढ़ा कि दादी ने खुद अपने हाथ से वो पत्र लिखा, तो मेरी तो सारी जैसे दर्द था ना सारे खत्म हो गए, इतना दादी जी का प्यार हमको मिला। ऐसे ही एक दूसरा अनुभव दादी जी के साथ का था, डायमंड हॉल की सेवा। जब राजस्थान का टर्न होता है तो अक्सर हम लोगों को, जोधपुर के भाई बहनों को वो सेवा दी जाती है। तो एक बार 18 जनवरी का हमारा टर्न था सेवा का, बहुत ठंडी थी और मैं स्टेज पर ही थी और दादी जी ऊपर आए थे माउंट आबू से, और 12 बजे बाबा को भोग लगता है। तो जैसे ही दादी जी स्टेज पर आई, काफी ठंडी थी, तो दादी ने क्या किया कि इसके हाथ तो बाहर हैं, दादी जी के हाथ शॉल में थे, तो दादी ने क्या किया एकदम से मेरे हाथ अपनी शॉल में ऐसे ले लिए कि तेरे को भी ठंडी लग रही होगी। जैसे मेरे को लगा जैसे माँ अपने बच्चे को है, जैसे बच्चा बहुत सर्दी में होता है तो माँ कैसे करती है, ओढ़ा देती है। इतना ममता का अनुभव हमने दादी जी के साथ किया। बहुत सारी विशेषताएं दादी जी की हम सुनते हैं पढ़ते हैं, लेकिन हमने तो अनुभव किया कि लौकिक माँ बाप भी वो ध्यान नहीं रखते हैं जो पालना बाबा और बाबा अपनी निमित दादियों के द्वारा हम बच्चों को देते हैं। इसलिए कई बार कोई लोग कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत त्याग किया। अभी अभी की बात है, अभी रक्षाबंधन गया, हम बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रंजीत जोशी जी हैं जोधपुर में हाईकोर्ट में, उनको राखी बांधने गए। तो उनको बांधी तो उन्होंने एक शब्द कहा, आप लोग पूछा सारे दिनचर्या, आप लोग कितने बजे सोते हैं, क्या करते हैं, सब बताया। हम इतने बजे सोते, अच्छा आप इतना कम सोते हो, तो कहा आप लोगों का बहुत त्याग है, बहुत त्याग है आप लोगों का। तो हमने कहा हमने कोई त्याग नहीं किया है। देखो एक, पहले एक भाई को राखी बांधते थे, और अब आप कितने भाइयों को राखी बांधते हैं, कितने, सारा संसार ही हमारा हो गया ना। तो हमने त्याग थोड़ी कुछ किया, हमने तो जो जितना हम बाबा के लिए करते हैं उससे अधिक हम बाबा से प्राप्त करते हैं। तब बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे ये सौदा घाटे का सौदा नहीं है, 21 जन्मों का सौदा है। भविष्य में तो बहुत कुछ हमको मिलेगा, लेकिन वर्तमान में भी हमको बाबा कितना भरपूर करते हैं, इतना हमें बाबा में निश्चय होना चाहिए। तो निश्चय जितना जितना बाबा में पक्का होता जाएगा, ये निश्चय के पॉइंट नहीं है कि भगवान है या नहीं। भगवान में तो सभी निश्चय करते, सभी को निश्चय है भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान ब्रह्मा के तन में आया हुआ है, वो कर्तव्य चल रहा है भगवान का, ये है निश्चय की पॉइंट, है ना। इस बात में जितना हमारा निश्चय हमारे ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, जितना हमको इस निश्चय पक्का होगा, हमारा ब्राह्मण जीवन का जो बिल्डिंग है ये बहुत अच्छी तरह से है बनेगी। हम अच्छे बाबा के पक्के बच्चे बन जाएंगे, और मुरली पर भी हमारा उतना ही ध्यान रहेगा, योग पर भी बाबा की हर श्री मत पर हमारा उतना ध्यान रहेगा। मुरली में तो बाबा के सभी बच्चे अनुभव करते हैं कि रोज का बाबा हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका बाबा आंसर दे देता है। लेकिन एक पुरुषार्थ जो मैं करती हूँ और साथ साथ भाई बहनों को भी हम कराते हैं कि मुरली में बाबा जो पॉइंट जिस समय बताता है, अगर उस दिन हम अपना होमवर्क उस मुरली में से ले लेते हैं तो उससे हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली थी कि पूरा भोजन बाबा की याद में खाना चाहिए, होना तो ये चाहिए पर बच्चे भूल जाते हैं। तो उस दिन हमने होमवर्क किया, हमने भी किया, भाई बहनों को भी कराया। फिर दूसरे दिन हमने सबसे अनुभव पूछा, अच्छा कैसा रहा, तो काफी भाई बहनों ने क्या किया, अपना हाथ अच्छी तरह भी 50% हम आगे बढ़े। ये तो परमानेंट बात है कि बाबा ने भी मुरली में भी कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा वही वही तो बातें रोज सुनाता रहता है। एक अभी बीच में बाबा की मुरली चली, बच्चों के मन में ये संकल्प नहीं होने चाहिए, वही वही बातें सुनाता रहता है बाबा। ये तो ठीक है बाबा वही बातें हमें सुनाते हैं, बाबा के सामने नए बच्चे भी होते हैं और बाबा इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हमने वो होमवर्क तो किया ही नहीं है। तो अगर हम रोज की मुरली में से एक पुरुषार्थ करें, एक तो होमवर्क हम अपने लिए जरूर ढूंढ लें कि आज मुझे इस बात पर पुरुषार्थ करना है। इससे मैंने नोट किया जो मैं करती हूँ उससे हमारे पुरुषार्थ के ऊपर बहुत अटेंशन रहता है। तो इससे पहले भी एक बार बाबा ने कहा था पूरा भोजन बाबा की याद में खाना चाहिए, फिर भूल जाते हैं, फिर बाबा मुरली चलाते हैं, फिर वापिस अटेंशन आता है। तो उस दिन सेंटर पे भी हम बहने भोजन करने बैठी तो फिर हम एक दूसरे को बाबा की वो पॉइंट सुना रहे थे। तो एक मैं पुरुषार्थ के लिए बात जरूर सभी को कहना चाहूंगी, आप लोग रखते ही होंगे, तो इसको अगर हम डबल अंडरलाइन करके चलेंगे तो हम पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। और बाबा जो स्वरूप हमारा देखना चाहता है, जैसे हमने इस भट्टी का नाम रखा है कौन सा, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो संपूर्ण और संपन्न बनने का तो शीलू बहन ने कल बहुत अच्छा अर्थ हम लोगों को समझाया। तो जो भी हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो सब हम इस भट्टी में क्या करेंगे, स्वाहा करके जाएंगे। ठीक है, अभी एक माता मेरे को, मैं सुबह बैठी थी कौन से सेंटर की थी, अपना अनुभव बता रही थी कि मैं सेंटर तो जाती हूँ लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, तो अब परिवर्तन करके जाना है। ठीक है, ये कहा मेरा बेटा कहते है तुम जाती तो हो वहां लेकिन तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। तो किसी बहन ने अपनी बात बताई, ऐसे बहुतों की बातें आती हैं। तो सर्टिफिकेट हमको किससे लेना है? घर वालों से लेना है, घर वाले कहें। तो इस बार जैसे पांडव भवन की भट्टी का जो आपको इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला है, तो इस गोल्डन चांस में क्या करना, पूरी तरह से परिवर्तन होकर के जाना और बाबा की बहुत बहुत मदद आपको इस भूमि में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक कण कण के अंदर साकार बाबा के तपस्या के वाइब्रेशंस भरे हुए हैं कि बाबा ने कितनी तपस्या की। बाबा की जीवन कहानी तो आप सबने पढ़ी होगी, आत्मा का पाठ भी बाबा ने कैसे पक्का किया, कैसे पक्का किया, लिख लिख करके पक्का किया। इतना पक्का किया कि बाबा की जो युगल थी ना यशोदा जी, वो भी बाबा को बाबा ही कहती थी, इतना बाबा ने अपने साथ मेहनत की है। तो थोड़ी मेहनत तो हमको भी अपने साथ करनी होगी, ये तो जरूर है। बाबा ने आज की मुरली में एक बात बताई कि ठीक है, कई बच्चे कहते हैं स्वर्ग में तो चले जाएंगे, कई बाबा कहते ठीक है दास दासी बन जाएंगे, अच्छा ठीक है आपके यहाँ की झाड़ू लगा देंगे। तो बाबा कहते अभी लगा लो ना झाड़ू, तो वहां नहीं लगानी पड़ेगी, अगर अभी कर्मणा सेवा कर लेंगे तो वहां नहीं करनी पड़ेगी। हर प्रकार की सेवा के लिए आज भी बाबा ने मुरली में कहा, चाहे बीमार हो तो भी सेवा कर सकते हो। इतना सहज रास्ता किसी ने भी आज दिन तक नहीं बताया। बताया एक बहन ने अपना अनुभव, कहां गई थी बहन, बैठी है सामने, अपना अनुभव सुना रहे थे। हम शिरडी जी गए, साईं मंदिर में गए, लेकिन हमें बाबा के घर की बहुत याद आई, जो व्यवस्था, जो सुविधा, जो धारणा की बातें, जो गहराई बाबा हम बच्चों को देते हैं, वो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती है। इसलिए बाबा ने थोड़े दिन पहले ही कहा, भले जाके देख के आओ, ऐसा ज्ञान कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कई कॉपी करने वाले जरूर हो गए हैं, यही मुरली उठा करके सुनाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन ना वहाँ पवित्रता की धारणा है, ना वहाँ कोई खान पान, कुछ भी खाओ पियो, मुरली पढ़ते रहो, योग करते रहो, ऐसा हमको नहीं बनना है। तो इस भट्टी से आप सब यही शुभ संकल्प करके जाना। और मैं तो पांडव भवन में जब आती हूँ, तो यहाँ आती हूँ तो मधुबन के भाई बहन, अच्छा भट्टी कराने आयो, अच्छा भट्टी कराने आयो, क्या नहीं भट्टी कराने नहीं आई हूँ, करने आई हूँ। मेरे को इस भूमि से इतना इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं मुन्नी दीदी को और शारदा बहन को भी हमेशा थैंक्स करती हूँ कि मुझे उन्होंने भट्टी में स्टेज का थोड़ी सी सेवा दी है, क्योंकि जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ मेरे को कौन दिखाई देता है, बाबा दिखाई देता है। और वो बाबा की बात जो यहाँ से करके जाती हूँ, तो वो थोड़ा एक साल तक, हर साल थोड़ा बाबा चांस दे देता है हमारी मुन्नी दीदी और शारदा बहन के द्वारा, फिर मेरे को वो वहां पर भी जाके बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए आप सब यहाँ पर आए हो, जो कल भी मैंने सुनाया ना, एक भाई ने कहा दुख होता है पांडव भवन नहीं जाने का, दुखों की लिस्ट में एक भाई ने ये भी लिखा था, सबसे बड़ा दुख कौन सा है पांडव भवन में नहीं जाना। तो हम सबको तो इतना अच्छा चांस मिला है, तो इस में यहाँ पर अच्छी तरह से रहकर अपनी बेटी को पूरा चार्ज करके जो कमियां कमजोरियां हैं उन सबको स्वाहा कर देंगे। बाबा को लिख करके दे देना, बाबा मैं ये छोड़ करके जा रही हूँ। आज भी मुरली में बाबा ने कहा, बाबा के पास बच्चों की प्रतिज्ञाओं के पत्र भी आए हैं, पर बाबा बार बार पत्र थोड़ी देखेंगे। बाबा मुरली में ये भी कहते हैं हम बच्चों को कि बाबा के पास बच्चों की वायदों की फाइल बहुत बड़ी है, लेकिन फाइल को अब क्या करना है, फाइनल करना है, फाइल नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये भी काम हो गया, मेरे अंदर ये भी कमी निकल गई, ये भी कमी निकल गई। तो जो हमारे साथी हैं, संपर्क वाले हैं, हमारे परिवार वाले हैं, उनसे हमको ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ ये जाकर के वहाँ पर बदल के आए हैं, तब कहेंगे कि हाँ पांडव भगवान की भट्टी बहुत बहुत है सफल रही। ठीक है, ओम शांति। तो ये थे थोड़े से साकार बाबा के साथ के अनुभव। हमारे लौकिक परिवार में मैं, मेरे से छोटी सिस्टर हैं, ढाई साल छोटी हैं मेरे से फूल दीदी, हम दोनों जोधपुर सेंटर पे रहते हैं। मेरी कजन सिस्टर बैंक में नौकरी करती थी वो, और जो भी उन्होंने कमाया वो जयपुर मालवीय नगर में एक बाबा का मकान बनाया और बाबा का वो सेवा में ही समर्पित किया उन्होंने। लेकिन अभी थोड़े कुछ साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। परिवार के और सभी सदस्य जो है, ज्ञान में कोई नहीं चलता है, लेकिन सभी सहयोगी जरूर हैं। तो एक ही परिवार से हम तीन बहनें बाबा की इन सेवाओं के अंदर समर्पित हुए हैं। और जहां जहां बाबा सेवा में भेजते हैं, ज्यादातर तो राजस्थान की सेवाओं में ही हम रहे हैं। और उस समय बहुत सेवाएं मुश्किल थी, आजकल तो सब सेवाएं बहुत सहज हो गई हैं। वो भी अनुभव किया और ये भी अनुभव किया, जब लोग ब्रह्मा कुमारियों को बहुत गाली देते थे, पर्चे बांटते थे तो हमारे सामने सामने पर्चे फाड़ देते थे, ये भी सुना, आप लोगों का मुंह देख लिया, सारा दिन खराब चला गया। और ये भी अब सुन रहे हैं, ये भी अब सुन रहे हैं कि आपको देख लिया ना बहन जी, आपके पास नहीं आते तो क्या हुआ, हमारा तो जीवन सफल हो गया है। वो भी समय था सेवाओं के अंदर, त्याग तपस्या वाला जो हमारी दादियों ने किया वो हम लोगों ने नहीं किया, जो हम लोगों ने किया वो आने वाली बहनों ने नहीं करेंगे। धीरे धीरे परिवर्तन तो होता ही जाता है। अभी जो सेवाएं चल रही हैं वो सब बाबा सूक्ष्म वतन से कर रहे हैं, और जो आज बाबा ने एडवांस पार्टी का बताया वो एडवांस पार्टी कर रही है, और हम निमित मात्र अपने कर्म की कलम से थोड़ा थोड़ा अपना भाग्य बनाते जा रहे हैं। जितना सेवा करते जाएंगे उतना भाग्य हमारा बनता जाएगा। सेवा में कभी भी हमें ना नहीं करनी है, क्योंकि मैं तो यही सोचती हूँ जितना हो जाए उतना अच्छा है। फिर तो शरीर दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, डाउन ही होता जा रहा है ना। जितना शरीर से कर सके उतना ही सपना सफल करते जाएं, जितना करेंगे उतना हमारा। बाबा ने कहा ना, मैंने भाग्य खींचने की कलम आपके हाथ में दे दी है, जितना खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, तो वो हमारे ऊपर है। ऐसा ना हो कि अंत में फिर पछताना पड़े। जो हम शास्त्रों में पढ़ते थे, क्या पढ़ा था शास्त्रों में, कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था, किसी की कुछ कमी होती थी ना, तो कहते तुम सो रहे थे क्या, या छलनी लेके खड़े थे क्या, या पीछे खड़े थे। जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो कहाँ थे तुम, सो रहे थे, पीछे खड़े थे, छलनी लेके खड़े थे। ये बातें हमने अपने बचपन में कईयों के मुख से सुनी हुई हैं, पर इसका अर्थ तो समझ में नहीं आया था। अब बाबा ने इसका अर्थ समझाया है, जो हमने पिछली मुरली में पढ़ा ना, भाग्य और भाग्य विधाता, भगवान आकर के भाग्य बना रहा है हमारा। ये अब समझ में आया कि भगवान भाग्य विधाता बनकर हमारा भाग्य बना रहा है। तो ऐसा ना हो जो हम अलबेले हो जाएं और फिर हमारा ये गायन हो कि सो रहे थे या पीछे खड़े थे या चलनी लेके खड़े थे, कैसे खड़े थे। तो जितना चाहें अपना भाग्य बनाने, मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सेवा करते जाएंगे, भाग्य की लकीर लंबी होती जाएगी। जितना बाबा को याद करते जाएंगे कमाई होती जाएगी, उतना सबकी दुआएं मिलती जाएंगी, और दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा तो फिर और क्या चाहिए। दादी जानकी हमेशा कहती है ना, कुछ करो नहीं करो सबसे दुआएं लो, हैं? दुआएं लेना कितना अच्छा है, तो उड़ते रहेंगे और साथ साथ दूसरों को भी उड़ाते रहेंगे। ओम शांति। 11:30, 11:15 ठीक है। ओम शांति। आपने मैसेज दे दिया वहां तो ठीक है, अभी 2 मिनट योग करके फिर अभी आपको लाइव दिखाएंगे ना, यही या उधर जाना, ठीक है। तो अभी हम शांतिवन में जो प्रोग्राम, दादी जी को भोग लगेगा, जो प्रोग्राम चलेगा वो लाइव देखेंगे, तो सभी जल्दी आ जाएंगे वापस। अच्छा एक बात मैं कहना भूल गई, मेरे से किसी ने पूछा था बाबा पत्र कैसे लिखते थे, तो सिंधी में बाबा लिखते थे, लाल पेन से लिखते थे, और उसके नीचे फिर हिंदी के अक्षर हमारी ईशु दादी जी लिखते थे। तो बाबा के कई पत्र थे हमारे पास, लेकिन एक पत्र पता नहीं कैसे बचा हुआ था। तो जब मेरे को परसों प्रोग्राम दिया, मैं यहाँ आई तो मेरे को शीलू बहन ने और शशि बहन ने कहा हम लोग तो नीचे जाएंगे और भट्टी वाले सब यहाँ रहेंगे, आपको भी यहीं रहना है। तो मुन्नी बहन ने भी कहा कि आप आना नीचे, मैंने कहा मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि भट्टी वाले ऊपर हैं। तो हमारे ज्ञान सरोवर से एक भाई गए हुए थे जोधपुर, तो मैंने फौरन फोन किया कि आपको क्लास करानी है बाबा के साथ का अनुभव सुनाना, ऐसा मेरे को शशि बहन और शीलू बहन ने कहा। तो मैंने फोन किया जोधपुर, एक भाई गए हुए हैं तो आप वो पत्र बाबा का भेज दो। तो आज सुबह ही 9 बजे की बस में बाबा का वो पत्र आया, मैं आपको दिखाती हूँ, पढ़ के भी सुनाती हूँ। मीनू बहन, बाबा का पत्र और बाबा के साथ फोटो है मेरी, एक बाबा के साथ 3-4 फोटो हैं, एक पोज जो बाबा का मैं हमेशा अपने को संकल्प देकर के अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाती रहती हूँ। बाबा का ने यहाँ बगीचे में, जहाँ झोपड़ी है ना, यहाँ बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे, तो झोपड़ी के बाहर ही बाबा ने मेरी अंगुली पकड़ी हुई है। मैं फोटो दिखाती हूँ आपको, मैंने फोटो भी मंगाई है, किसी भी ग्रुप को आज दिन तक फोटो नहीं दिखाई, आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये सब आप देख लेना, आप अपने हाथ से देख लेना, मैं यही रख रही हूँ। ये हमारे लौकिक फादर जी फादर हैं, बाबा के साथ देख लेना, हाथ में उठा के नजदीक से देख लीजिए। ये पोज है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, बाबा ने इसमें मेरी अंगुली पकड़ी हुई है। बस ये चित्र, ये फोटो मेरे को बहुत बहुत पावर देता है। इसमें बाबा ने अंगुली पकड़ी, इसमें ग्रुप फोटो है, आप देख लीजिएगा, दिखा देना सभी को। तो मैं बाबा का पत्र पढ़ के सुनाती हूँ। ये बाबा का पत्र है, लेमिनेशन किया है, इसमें अक्षर तो काफी मिटे हुए हैं। नूरे रतन भगवान लाल, हमारे लौके फादर का नाम, बिंदी मतलब हमारी मम्मी थी गोबिंदी, बाबा उनको कहता था बिंदी, गोबिंदी प्रीतम शील फूल, शील मेरा नाम, फूल हमारी छोटी बहन है जो, और रामचंद्र कृष्णा, ये हम हमारे दूसरे भाई बहन थे सेंटर के, इन बच्चों का पत्र पाया। कितना शॉर्ट एंड स्वीट लेटर, बाबा सीखने लिखने की कला, इतने सुंदर शब्दों में बाबा बहुत कुछ कह जाते लिखते थे हम बच्चों को। इन बच्चों का पत्र पाया, हर्ष आया, पत्र भगवान ला देरी से लिखा, हर्जा नहीं है, उन्होंने लिखा बाबा आपको बहुत देर से पत्र, क्योंकि बाबा के पास बच्चों का पत्र नहीं जाता था ना, तो बाबा को चिंता होती थी, जैसे लौकिक में होता नहीं आजकल तो बच्चे मोबाइल में बात कर लेते हैं, नहीं आए थोड़े दिन फोन तो पता नहीं क्या है बच्चे, बाबा को भी चिंता होती थी। बाबा ने अभी 5-6 दिन पहले मुरली में कहा, हाँ मैं तुम्हें याद करता हूँ और किसी को याद नहीं करता, तुम्हें याद करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ। तो बच्चों का पत्र नहीं आता तो बाबा सोचते थे कहीं माया खा तो नहीं गई बच्चों को, माया की गोद में तो नहीं चले गए बच्चे। बाबा कहते बच्चे इतना तो लिखो, आई एम ओके। तो पत्र भगवान लाल देरी से लिखा, हर्जा नहीं है, व्यवहार में नीचे ऊपर वो पड़ता है, बिजनेस के कारण उनका देर से लिखा है। बाबा हर प्रकार की मदद देते रहेंगे जो निर्मला के पत्र में लिखा है। ये क्या था कि एक नया सेंटर खुलने वाला था राजा पार्क एरिया में, उस समय का ये बाबा का पत्र है, जब निर्मला दीदी उसे सेवा में वहां पर आई थी। फालतू खर्चा नहीं करना है, सेंटर खोलने उन्होंने निमंत्रण दिया था, इस कॉलोनी के भाई बहनों ने, उसमें हमारे फादर थे, हमारे अंकल थे, बाबा आप इस एरिया में सेंटर खोलो, एक दूसरा सेंटर और था, हम पूरी मदद करेंगे। तो बाबा ने कहा बाबा भी मदद देंगे लेकिन फालतू खर्चा नहीं करना है। शील बेटी कहे कि अपना नया सेंटर की सर्विस कर, शो करके दिखाऊंगी, क्यों नहीं, बहुत मीठी बच्ची है। तो ये बाबा का मेरे पास खजाना है, बहुत बड़ा श्रृंगार है, खजाना है, वरदान है, ओम शांति। तो ये आपको ही बाबा ने दिखाना होगा, तो इसीलिए समय पर ये पत्र और ये फोटो पहुंच गई है, आप पहले इसको देख लेना, अनमोल चीज है, बहुत बड़ा खजाना है, ओम शांति। हमारी दीदी ने भी हमारे को समर्पण होने में बहुत बल भरा, मैं डरती थी थोड़ा समर्पण होने में, नाच नखरे वाले थे ना थोड़ा, ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन दीदी ने, निर्मला दीदी ने एक शब्द हमें कहा था कि देखो उस दुनिया में हम जाते हैं तो भी सहन करना पड़ता है, और वह यहाँ आएंगे भगवान के बनेंगे तो भी कई बातें सहन तो हर फील्ड में होती हैं, परीक्षाएं तो सबके पास आती हैं, बाबा के घर में रहने वाले बच्चों के अपने प्रकार की होती हैं, समर्पण होने वालों के अपने प्रकार की होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि देखो वहां भी सहन करना है, यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ भगवान के सद के हम सहन करते हैं, इसलिए हमारा भाग्य बन जाता है, और वहां सहन करते हैं तो कुछ भी हमारा भाग्य नहीं बनता है। तो उन्होंने भी बहुत प्रेरणाएं दी, हमें आगे बढ़ाया। दादी प्रकाशमणि जी ने भी बहुत हमारी पालना की, आगे बढ़ाया। आप दीदी मनमोहिनी जी भी जयपुर आते रहते थे, उन्होंने भी बहुत स्नेह प्यार दिया, और हम आगे बढ़े और बढ़ते जाएं और मंजिल पर जल्दी से जल्दी सब बाबा के बच्चों के साथ पहुंच जाएंगे। ओम शांति। ये देख लेना आप लोग सभी हैं, एक एक करके देख लो पहले।
अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव अनुभव बड़ा मेरा।